તારીખ 18-8-1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 833 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 125.
સર્વદ્રવ્ય છે, સર્વક્ષેત્ર છે, સર્વકાળ છે, સર્વભાવ છે, સર્વ પ્રકારે વિતરાગી પુરુષોં કો નમસ્કાર કિયા હૈ. કૈસે હૈ કે સર્વ દ્રવ્ય સે, સર્વ ક્ષેત્ર સે, और सर्व भाव से, जो सर्व प्रकार से प्रतिबद्ध होकर के निस्वरूप स्थिर थे, वे परम पुरुषों को नमस्कार. क्या है जीव के परिणाम अनादि से ऐसे हो के अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की असर उसको पहुंचती है. जिस जिस माहौल में जीव जाता है वहां उसकी असर लेता है. कुसंग में कुसंग की, सत्संग में सत्संग की. ऐसा एक परिणाम धर्म भी है कि जो संसार अवस्था में परद्रव्य के संग में परद्रव्य के असर को धारण करता है, उसको संस्कार नहीं से ऐसा प्रकार का धर्म स्वीकार करने में आया है. प्रवचन सार में है 47 नहीं, उसमें एक संस्कार नहीं है. संस्कार में से आत्मा अन्य द्रव्य क्षेत्र का भाव के असर ग्रहण करने वाला है, लेकिन कहाँ तक के पूर्ण वितराग नहीं हुए वहां तक. इसलिए वो पर्याय धर्म है और वो भी संसार अवस्था पूर्ता पूर्ता संसार अवस्था तक सीमित है. जो वितराग पुरुष हुए, जितने भी वितराग हुए, उनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई असर नहीं पहुंचते. जैसे सर्वज्ञ वितराग तीर्थंकर देव जिनेन्द्र परमात्मा समोह शरण में विराजमान होते हैं, उस वक्त समोह शरण की रचना जो दैवी वैभव पूर्ण है, कैसे है? दैवी वैभव है। वो देवों ने, इंद्र ने ऐसा वैभवपूर्ण समोसरण धर्म सभा बनाई है। इस धर्म सभा में देवियां, इंद्राणियां सब आकर के भगवान के सामने नृत्य करती है, भक्ति से। फिर भी भगवान के परिणाम में इसकी कोई असर नहीं पहुंचते। कोई ज्ञानस्थ है, उपयोग आत्मा में अंतर्मुख, निरवशेष अंतर्मुख, परिपूर्ण अंतर्मुख हो गया है, और ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, इसमें समोसरण के दृश्य भी झलकते हैं, लेकिन उपयोग बदलता नहीं, उपयोग स्वरूप को छोड़ता नहीं। क्यों? के परिणाम को कोई अन्य द्रव्य क्षेत्र और काल भाव के असर नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? कि असंस्कार नहीं से आत्मा ऐसा है कि कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के असर उसको नहीं पहुंचे। ऐसा भी है, जब संस्कार नहीं से अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के असर पहुंचती है, उसी वक्त असंस्कार नहीं से ऐसा भी है कि उसी को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कोई असर नहीं पहुंचे। हाँ, उसी का स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि आत्मा को आत्मा के मूल स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा का मूल स्वभाव ऐसा है कि उसमें कोई अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के असर नहीं पहुंचते, तो हमेशा हमेशा एक रूप रहता है, उसमें कोई फेरफार नहीं होता। उसी वक्त वो त्रिकाल ऐसा है, ऐसा जो मूल स्वरूप है आत्मा का, वो तो हमेशा मैंने त्रिकाल ऐसा ही है। हाँ, मूल स्वरूप, सामान्य स्वरूप को, मूल स्वरूप को। जबकि संसार अवस्था में जो पर्याय है, हालत है, अवस्था है, उसमें वो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की असर पहुंचती है, और पहुंचे ऐसा भी है, आत्मा ऐसा है। परस्पर विरुद्ध धर्म को धारण करता है एक ही काल में। तो जिसकी अवस्था स्वभाव रूप हो गई और संसार संसरण परिणमन का नाश हो गया, संसार मैंने क्या, स्वभाव से च्युत होकर के संसरण सरक जाना, स्वभाव से सरक करके, संसरण करके परिणमन हो जाना, उसको कहते हैं संसार। ये संसार भाव का जब स्वभाव के आश्रय से नाश होता है, ऐसा निवृत्त हो जाता है परिणमन, तब कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के असर आत्मा के परिणाम को नहीं पहुंचते। स्वभाव को तो पहुंचती नहीं थी, अब स्वभाव रूप परिणमन हो गया तो उसको भी नहीं पहुंचती है। ऐसे स्वभाव रूप परिणमन करने वाले परम पुरुष है, भगवंत पुरुष है, उनको नमस्कार करते हैं। ये बात है 13वें गुणस्थान वाले का। तेरहवें गुण स्थान में परिपूर्ण दशा हो जाती है। ऐसे तो वितराग दशा तो बारहवें गुण स्थान में पूर्ण हो जाती है, बारहवें के अंत में, परंतु वहां उपयोग पूर्ण नहीं होता है, वहां छद्मस्थ दशा है। और तेरहवें गुण स्थान के प्रारंभ में पहले समय में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसमें उपयोग तो स्वरूप में लगा हुआ रहता है, फिर भी वो उतना निर्मल और शुद्ध है कि उसी उपयोग में लोकालोक भी झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। और लोकालोक तीनों काल की अवस्था सहित प्रतिबिंब होते हैं। जो अनंत अवस्थाएं हो गई और अनंत होने वाली है और वर्तमान में अनंत हो रही है, सभी को एक समय में वो जान लेता है, या एक समय में सभी का प्रतिबिंब हो जाता है केवल ज्ञान में,
महासागर ज्ञान में, महासागर
इतना निर्मल और शुद्ध ज्ञान है। फिर भी किसी भी ध्रुव क्षेत्र काल भाव की असर पहुंचती नहीं है। ऐसे परम पुरुष, पुरुष ने कहा, सत्पुरुष ने कहा, परम पुरुष कहा है, ऐसे परम पुरुषों को नमस्कार। चतुर्थ गुण स्थान में स्वभाव आंशिक रूप से प्रकट हुआ है, तेरहवें गुण स्थान में परिपूर्ण प्रकट हुआ है, और चतुर्थ गुण स्थान में आंशिक रूप से प्रकट हुआ है। जितने अंश में प्रकट हुआ है उतने अंश में असर नहीं पहुंचती, और जितनी विभाव दशा रह गई है उतनी असर पहुंचती है।
असर पहुंचती है उस समय क्या?
उस समय उपयोग बाहर जाता है, ज्ञान गुण में उपयोग बाहर जाता है, जबकि श्रद्धा के परिणमन में असर नहीं पहुंचती है, क्योंकि वहां स्वभाव रूप पूर्ण श्रद्धा का पूर्ण शुद्ध परिणमन हो गया। ज्ञान में अधूरा परिणमन है तो उपयोग बाहर जाता है। चारित्र में अस्थिरता है तो रागांश की उत्पत्ति हो जाती है, पूरा राग नहीं उत्पन्न होता है, अंश रूप राग उत्पन्न होता है और अंश रूप वितराग का भी रहती है, ऐसा बनता है। चतुर्थ गुण स्थान से वो फर्क पड़ जाता है। ऐसे पुरुषार्थ में भी थोड़ा पुरुषार्थ स्वभाव सदृश है, थोड़ा विभाव सदृश है। सुख में भी
थोड़ा थोड़ा लेते हैं, उसमें अधिकतर तो स्वभाव की तरह,
हाँ अधिकतर स्वभाव के हैं, अल्प विभाव है और स्वभाव ज्यादा है, यानी स्वभाव रूप परिणमन बलवान है और विभाव रूप परिणमन निर्बल है। निर्बल है वह आगे जाकर के और निर्बल हो जाएगा, तेपण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां अंते थाए निज स्वरूप मां लीन लो। ये परिस्थिति साधक की सहज रूप से बन जाती है और आखिर में वो परम पुरुष पूर्ण दशा वाला होता है। ऐसे वितराग पुरुषों को प्रारंभ में, पत्र के प्रारंभ में नमस्कार किया है। अब कहते हैं कि वितरागता कैसे होती है, कि जिसको कुछ प्रिय नहीं, जिसको कुछ अप्रिय नहीं। क्या वितरागी पुरुषों को, आत्माओं को कोई चीज प्रिय नहीं होती, कोई प्रसंग कोई चीज अप्रिय भी नहीं होता। जिसको कुछ प्रिय नहीं, जिसको कुछ अप्रिय नहीं, जिसको कोई शत्रु नहीं और जिसको कोई मित्र नहीं, संसार के सभी प्राणी में संभाव है, कोई शत्रु मित्र रूप दिखाई देते नहीं है। चाहे कोई जीव शत्रुता के परिणाम करता भी है तो भी, और इसका ज्ञान भी होता भी है तो भी, उनको कोई शत्रु नहीं और उनको कोई मित्र भी नहीं है। ये भी 13वें गुण स्थान में है, या मुनि दशा में भी ऐसा ही होता है, कोई शत्रु मित्र नहीं रहता है। शत्रु मित्र वर्ते प्रत्यय वर्ते समदर्शिता, मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव, जो जीवित के मरणे ने न्यूना जीतता, भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते संभाव। ये मुनि दशा में संभाव अधिकतर होता है। चतुर्थ गुण स्थान से अंश प्रकट होता है, मोक्ष की भूमिका में संभाव नहीं रहता है, संभाव का प्रयास रहता है, संभाव होता नहीं है, रहता नहीं है, वो प्रयत्न दशा है। और मोक्ष मार्ग है उस प्रयत्न का फल रूप दशा है, वहाँ भी प्रयत्न चालू रहता है, जिस प्रयत्न के फल से परिपूर्ण वितरागता पूर्ण दशा हो जाएगी। क्या कहा कि जिसको कोई प्रिय नहीं, जिसको कोई अप्रिय नहीं, जिसको कोई शत्रु नहीं, जिसको कोई मित्र नहीं, जिसको मान अपमान लाभ अलाभ हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, द्वंद्व मैंने जिसमें अब सपेक्ष जोड़ का होता है, मान के साथ अपमान, जीवन के साथ मरण, हर्ष के साथ शोक, लाभ के साथ नुकसान, ऐसा है दो, हाँ दो प्रकार के सापेक्ष भाव का जिसको अभाव हो गया, जिसको अपमान तो नहीं लगता लेकिन मान भी नहीं लगता।
अगर दोनों में से एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर नहीं
हो ही, तो कभी छिपा हुआ रहता है, लेकिन है तो सही। जैसे कि एक दृष्टांत ले, कोई ऐसा कहेगा कि हमको मान नहीं चढ़ता है, कोई कितने भी हमारी प्रशंसा करे, हमारा सम्मान करे, आदर सत्कार करे, भक्ति करे, हमको मान नहीं चढ़ता है, लेकिन जब इसका अपमान होता है और इस अपमान के प्रति उनको अणगमा होता है, यानी सुहाता नहीं है, तो अवश्य अवश्य उनको मान प्रिय है और है ही, यहाँ से नाप निकलता है। इसलिए जब जब हमारा कोई अनादर हो, हमारा अपमान हो, हमारा तिरस्कार हो, चलो पर वो हमको पसंद नहीं आए, ज्यादा हम द्वेष नहीं करें, क्या हम मुमुक्ष हैं ज्यादा द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन हमको पसंद नहीं होगा, तो इस हम अपने को ये स्वीकार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमको मान प्रशंसा स्तुति भक्ति आदि पसंद है, ये नापसंद है तो ये पसंद है, ये पसंद है तो ये नापसंद है, ये साबित करने की जरूर भी नहीं है, ऑटोमेटिक वो साबित हो ही जाता है।
किस फैक्टर में ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या होता है? मानव मान के फैक्टर में ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है?
अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर होता है, ऐसा एक प्रश्न है इन विषयों में। तो अज्ञानी को दर्शन मोह सहित राग द्वेष होता है, जबकि ज्ञानी को दर्शन मोह का अभाव होकर के मात्र चारित्र मोह का राग द्वेष होता है।
दोनों के परिणमन में ना क्या फैक्टर है, ये तो समझने का दृष्टिकोण
है। हाँ, तो एक तो ये बात रही व्यवस्थित रूप से समझने के, अब परिणमन में क्या होता है कि जिसको दर्शन मोह का सद्भाव पूर्वक राग द्वेष होता है वो परिणाम चिकने होते हैं, रस वाले होते हैं, जबकि जिसको दर्शन मोह का अभाव होकर के मात्र चारित्र मोह का राग द्वेष होता है उनके परिणाम रूखे होते हैं, नीरस होते हैं, उतना फर्क पड़ता है। रस वाला जो परिणाम होता है वो तीव्र अनुबंध को करता है और नीरस वाले परिणाम से उतना तीव्र अनुबंध नहीं होता, ये फर्क पड़ता है। चिकनापन से नाप निकलता है, पर रस से, रस को चिकनापन को एक ही परिणाम के अलग अलग फैक्टर हैं।
रस का अभाव तो सिर्फ ज्ञानियों को होता है।
हाँ,
मुमुक्षु को तो रस का अभाव तो होता नहीं है।
नहीं, रस पतला पड़ता है,
ज्ञानियों का रस का अभाव रहता है कि रस मंद भी रहता है।
हाँ, रस मंद भी रहता है और कुछ अंश में अभाव भी होता है।
अभाव तो सिर्फ निर्विकल्प दशा के काल में होता होगा।
निर्विकल्प दशा के काल से अभाव हो गया तो हो गया, फिर सविकल्प दशा में भी अभाव ही रहता है।
जाता है
तो सविकल्प दशा में आता
है,
निर्विकल्प दशा में अभाव रहता है बुद्धिपूर्वक का, अबुद्धिपूर्वक का तो मंदपना रह जाता है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक का राग का अभाव है, अबुद्धिपूर्वक का राग का सद्भाव है। अगर बिल्कुल रस नहीं होता, परिपूर्ण रूप से रस का अभाव होता तो पूर्ण वितराग हो जाता, लेकिन साधक है पूर्ण वितराग है, वो अधूरा वितराग है, पूर्ण वितराग नहीं है, इसलिए वो साधक है। तो अंश रूप साधकपना होता है और अंश रूप बाधकपना भी होता है।
यहाँ पर एक चीज है, ये प्लस पॉइंट है कि स्वरूप प्रत्यक्ष होने के कारण वो लंबाता नहीं है परमात्मा, सम्यक्त गुण के कारण। इस पे कौन सा गुण काम करता है? इस समय इस दशा में भी जब वो टिके हुए रहते अपने ज्ञान पने में, तो कौन सा गुण काम करता है?
प्रसाद काम करता है। सम्यक तो भी काम करता है और पुरुषार्थ दो काम करता है, टिकाए भी रखता है और आगे भी बढ़ाता है। पुरुषार्थ का कार्य क्या? समय सार के 47 शक्ति में वीर्य शक्ति, पुरुषार्थ को वीर्य शक्ति कहा है, चैतन्य वीर्य। तो वो उसका कार्य क्या? स्वरूप रचना करना, वही इसका कार्य है। परिणाम को स्वरूप रूप कर देना, यही इसका कार्य है। तो जब हर परिणाम में वो स्वरूप रूप परिणमन करता है तो अगले परिणाम से वो अधिक करता है, तो आगे बढ़ा। तो उसी परिणाम को स्वरूप रूप करता है तो उसमें टिकाया भी, आगे बढ़ा तो टिकाया वो कहने की जरूरत नहीं रहती, ऊपर वाले में नीचे वाले की स्थिति आ जाती है। ऐसा
इसमें एक फैक्टर और काम करता है, ज्ञानी को उसी समय मालूम पड़ता है प्रभाव परिणाम का, उसी समय मालूम पड़ता है, और जबकि अज्ञानी को थोड़ी समय का अंतराल है।
तो ज्ञानी का ज्ञान दर्पणवत हर समय परिणमन करता है, सफर प्रकाशक शक्ति प्रकट हुई है, स्वभाव शक्ति, तो एक साथ दोनों का ज्ञान हो जाता है। हाँ, उस वक्त अपना भान भूलता है। जब कोई जीव मिथ्यात्व अवस्था में चिकना परिणाम करता है तो उसको क्या कहते हैं ज्ञानी, कि वो चिकना परिणाम जिस पदार्थ के प्रति हुआ उसमें वो मूर्छित हो गया है। क्या हुआ है? मूर्छित हो गया है, तो उसको मूर्छा भी कहने में आई है। जब फिजिकल साइंस में कोई मनुष्य मूर्छित होता है तो अपना भान भूलता है कि नहीं भूलता है, ये आध्यात्मिक परिभाषा में भी जो अपना स्वरूप का भान भूलता है उसको मूर्छित अवस्था कहने में आती है, वो मूर्छा खा जाता है। वो बात है, हाँ, स्वरूप की जागृति का अभाव होने से परिणाम में चिकास हुए बिना रहती नहीं। खास करके अभिप्राय पूर्वक इष्ट अनिष्ट होता है तब परिणाम अधिक चिकने होते हैं। मुमुक्षु की भूमिका में भी अभिप्राय विरुद्ध राग द्वेष होता है, गाढ़ चिकाट नहीं रहती, जो आगे जाकर के अभाव हो जाएगी, उतना फर्क पड़ता है।
थोड़ा फर्क भी बहुत फर्क पड़ जाता है।
हाँ,
थोड़े से फर्क
भी
बहुत फर्क पड़
जाता, फर्क तो पड़ता ही है।
एक स्वभाव से दूर ले जाने वाला एक स्वभाव के सम्मुख लाना
है। तो क्या एक मुमुक्षु दशा है वो पूर्ण वितराग सिद्ध दशा है, उसकी नींव वाली दशा है। तो नींव की कीमत कितनी, नींव की कीमत कितनी, कि इतनी कीमत है कि इसकी मजबूताई से सिद्ध पद अनंत काल रहता है। अनंत काल सिद्ध पद सिद्ध अवस्था क्यों रही, क्योंकि नींव इतनी मजबूत है इसलिए रही। वो बात है, कोई मकान सैकड़ों साल तक गिरता नहीं है इसका मतलब क्या है, कि इसकी नींव इतनी मजबूत है। कोई वृक्ष गिरता नहीं, झंझावात आता है, तूफान होता है, तो भी कोई वृक्ष नहीं गिरता है, इसका कारण क्या है, इसके इसका मूल मजबूत है। जिसका मूल मजबूत वो गिरेगा नहीं। ऐसा दिखा हो जाता है, बाकी तो वैराग तो ज्ञानी का विशेष होता है, क्योंकि उसको तो भिन्नत्व हो गया।
बाहे में ज्यादा देखने के लिए,
लेकिन बाहे में दिखाव ज्यादा मुमुक्षु का आता है, ज्ञानी का नहीं आता है, क्योंकि वो थोड़ा अंदर में ठहर गया है, स्थिर हो गया है। मुमुक्षु थोड़ा इमेच्योर होता है उन्होंने इसलिए इसकी उछल कूद दिखने में आती में जम गए हैं तो इस कुछ दिखने में नहीं आती। इसका मतलब वो नहीं कि ताकत कम है,
यही कारण है कि मुमुक्षु को पहचाना जा सकता है, ज्ञानी से भी ज्यादा।
हाँ, इस कारण से मुमुक्षु के असर मुमुक्षु को ज्यादा पहुंचती है, ज्ञानी के असर कम पहुंचती है, लेकिन उत्कृष्ट मुमुक्षु को ज्ञानी की असर ज्यादा पहुंचती है।
अब जैसे ऊपर वाले
आगे वाला का असर ज्यादा पहुंचता है हमेशा। इसलिए ज्ञानियों ने उत्कृष्ट मुमुक्षुओं का संग करने को सामान्य मुमुक्षु को कहा है कि इसके सत्संग में रहिए, क्योंकि उनको अपने ऊपर वाली बात सीधी दिखाई देती है कि देखो ऐसा इनको हुआ ऐसा मुझे होना चाहिए। जबकि ज्ञानी इस भूमिका को क्रॉस कर गए हैं, तो वो भूमिका तो उसको दिखेगी नहीं, बीच वाली परिस्थिति दिखेगी नहीं, आगे वाली तो जब दिखेगी उतनी निर्मलता आएगी तब, उसके पहले तो ज्ञानी पहचाना भी नहीं जाएगा। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि अपने से आगे उत्कृष्ट मुमुक्षु हो, उसका संग वो किया करे। कौन फीलिंग रहित होगा?
बौद्धिक स्तर पे बात सेट हो जाती है तो क्या होता है ना, अपने से वो आगे चलो उसके पीछे चिपक जाओ, फिर और कोई आगे दिखता उसके पीछे चिपक जाओ, तो ये बदलता चला जाता है। एक के प्रति वो एक निष्ठा का भाव नहीं आ पाता है, जबकि लाभ एक से होता है तो एक के चिपक ही जाता, चौंक जाता, फिर अन्य का विकल्प नहीं आता
होता।
बौद्धिक लेवल में ये बात होने से फिर यहाँ पे भी जीव मार खा जाता है।
निमित्त नैमित्तिक संबंध में कभी ऐसा भी होता है कि किसी से किसका निमित्त पड़ता है, किसी से किसका निमित्त पड़ता है, ऐसा भी होता है।
निमित्त पड़ता है फिर वो बदलता नहीं रहता है।
बदलने का सवाल, जब उनको लाभ होता है तो क्यों बदलेगा?
बराबर है।
बदलेगा कब के लाभ नहीं होगा तब? जब लाभ नहीं होगा तो बदलने का विचार या प्रकार बनेगा, लेकिन लाभ होगा
तो जितने लाभ होगा
वही निमित्त निमित्त एक संबंध बोलेंगे, उनके साथ का वो निमित्त निमित्त एक संबंध है। दूसरा क्या है, उसमें बहुत से पहलू हैं, बहुत से पहलू, बहुत से फैक्टर समझना चाहिए। तो जैसे अपनी प्रकृति, मुमुक्षु की कोई प्रकृति होती है, ऊपर वाले मुमुक्षु की भी कोई प्रकृति होती है, नीचे वाले की भी कोई प्रकृति होती है, किसी के किसी प्रकृति का शूट होता है, किसी से किसका प्रकृति का शूट नहीं होता है, ये होता है कभी कभी। तो क्या होता है कि मेल नहीं खाएगा, मेल नहीं खाएगा तो क्या, प्रकृति का जोर तो नीचे ज़्यादा है, जो प्रकृति क्लैश होगी तो मेल नहीं खाएगा, तो उसका परिणमन का असर नहीं पहुँचेगा। तो प्रकृति का ऐसा नहीं हुआ है, और प्रकृति मेल खाती है तो उनका परिणमन देखने का अवकाश आएगा, क्लेश नहीं होगा तो अवकाश रहेगा। उस तरह से भी निमित्त नैमित्तिक संबंध अनेक प्रकार से काम करते रहते हैं, बहुत सी बातें हैं।
पहचान के बाद आती है।
हाँ, बिना पहचान यानी यहाँ लाभ होता है तो उपकार बुद्धि आती है।
मतलब यहाँ लाभ होता है तभी तो प्रश्न आता है कि पहचान हुआ।
हाँ, हमको लाभ नहीं हुआ तो हमको उपकार मानना कैसे होगा?
ऐसा भी देखने में आता है।
लाभ नहीं हुआ तो भी,
तो
वो संज्ञा में होता है, वो संज्ञा में होता है। ओक संज्ञा में इतना नुकसान नहीं है लेकिन उतना लाभ भी नहीं है,
संतुष्ट बना आ जाए तो नुकसान है।
तो नुकसान है एक बात, दूसरा ओक संज्ञा में ज्यादा वक्त टिके तो नुकसान होने की संभावना हो जाती है। हाँ, इसलिए ओक संज्ञा में ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए, वो बात है। बहुत सी बातें हैं उसमें तो। इधर क्या कहा, ये सभी प्रकार के द्वंद्व का अभाव हो करके जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति को प्राप्त हुए हैं और होंगे, इनके अति उत्कृष्ट पराक्रम स्व आनंद आश्चर्य को उत्पन्न करता है। हाँ, आश्चर्य भी होता है और आनंद समेत आश्चर्य होता है। हाँ, क्या है पराक्रम, किस चीज का है? पुरुषार्थ का पराक्रम है, इधर पुरुषार्थ का पराक्रम है। कि जिसको कुछ प्रिय नहीं है और जिसको कोई अप्रिय नहीं है। जगत के कोई पदार्थ प्रिय अप्रिय नहीं लगता है, एकदम वितराग भाव में जो स्थिर हो गया पुरुषार्थ के कारण से, जिसको कोई शत्रु मित्र भी दिखने में नहीं आता है। अगला शत्रुता करता है, सामने वाला शत्रुता का भाव रखता है, शत्रुता के परिणाम करता है, शत्रुता के शब्द बोलेगा, शत्रुता का अभिप्राय रखेगा, फिर भी जो वितरागी पुरुष है उनको कुछ असर नहीं पहुंचती, तो ज्ञाता दृष्टा रह जाते हैं। तो ज्ञेय मात्र दिखता है, सब ज्ञेय है, चित्र विचित्र ज्ञेय कुछ भी हो हमें क्या लेना देना। जब हमारे से भिन्न है ज्ञेय, हम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय मात्र भिन्न है और हम ज्ञान मात्र है, तो हमको कोई शत्र मित्र दिखे दिखता नहीं है।
अपने कहलाने वाले राग द्वेष का हमारा कोई संबंध नहीं है, तो परता संबंध का प्रश्न
का होता है। वितरागी पुरुष तो राग द्वेष नहीं है ना उनको, तो
नहीं जैसे पहले भी एक जैसे कभी भी
हाँ
नीचे के गुणस्थान वालों को थोड़ा बहुत भी होता है।
हाँ तो उससे भिन्नत्व कर लेता है, उससे भी भिन्नत्व वर्तता है। साधक अवस्था में जब जब राग द्वेष हुआ तब तब उससे भिन्नता हुई अनुभवन में परिणमन में, पर उस भिन्नता के कारण वो उत्पन्न होना बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया और केवल वितरागता रह गई। उनके ज्ञान में परिपूर्ण ज्ञान में सब झलकता है तो भी उनको कुछ होता नहीं है। हाँ झलकता है सब, लेकिन जितना चारित्र मोह है सम्यक दृष्टि को उतना उनको राग द्वेष की असर हो जाती है, करते नहीं है, हो जाती है, पर उसका निषेध भी उसी वक्त उसको अवर्तता है। निषेध का भी ज्ञाता है, ज्ञान का भी ज्ञाता है और विभाव का भी ज्ञाता है, स्वभाव का भी ज्ञाता है और विभाव का भी ज्ञाता है। एक न्याय से राग को करना भी नहीं है और हटाना भी नहीं है। वो तो कृपाल देव का पत्र पढ़ा 8वां पुरस्कार में वो बात आई, करते भी नहीं और हटाते भी नहीं है। सहज उसका अभाव इसमें क्या है कि जो राग द्वेष आदि विभाव रहा उनको टीबी लागू पड़ा है, क्षय रोग। क्या? तो जिसको क्षय रोग लागू पड़ता है वो क्षय होता जाता है ऑटोमेटिक। जिसको क्षय रोग लागू हो गया वो खत्म हो जाएगा, जैसे कोई वृक्ष होता है उसमें से उसका रस निकलता है, कि पीपर में से लाख पीपर वृक्ष होता है ना, पीपर बोलते हैं ना आप लोग, हाँ उसमें रस निकलता है गोंद जैसा लाख चिकना। प्रोडक्ट तो इसकी है, किसकी है, हाँ इस लाख का बैंगल्स बनता है और ये सील लगाने में भी काम आता है लाख। वो जो लाख है वो पीपर में से ही निकलती है, प्रोडक्ट तो इसकी ही है, लेकिन उसको ही खा जाती है। जिस पीपर में से लाख निकली वो पीपर आगे जा करके खत्म हो जाएंगे। क्यों? कि पीपर का और लाख का संबंध आपस में होने पर भी वद्य घातक संबंध है। कैसा संबंध है? वद्य, एक घातक है और एक घात होने लायक है, वध होने लायक है। ऐसे आत्मा में से राग तीव्र निकलता है, मिथ्यात्व अवस्था में अज्ञान निकलता है, मिथ्यात्व निकलता है, तो आत्मा को मारता है, इसकी शांति का खून करता है, इसका ज्ञान का खून करता है। मध्यघातक समझ जाए, समय सार में वो बात चली है, कर्ता कर्म अधिकार में वो बात चली है, मध्यघातक संबंध है। और जब आत्मा बलवान होता है तो उसको विभाव को क्षय करेगा वो, क्यों के स्वभाव का स्वभाव विभाव का क्षय करणशील है। क्या आत्मा का स्वभाव विभाव का क्षय करणशील है, तो विभाव को क्षय कर देता है, पर उसको टीबी लागू पड़ता है तो विभाव आखिर में खत्म हो जाता है। क्या कहा कि जिन वितरागी पुरुषों को कुछ प्रिय नहीं, कुछ अप्रिय नहीं, कोई शत्रु मित्र नहीं, जिसको मान अपमान का अभाव हुआ है, जिसको कोई लाभ नुकसान जैसी चीज नहीं, लाभ नुकसान उसको होता ही नहीं, जिसने लोग जिसको लाभ समझते उसका तो त्याग कर दिया है, इसको नुकसान किस बात का होता है। संसार में जिन जिन चीजों की प्राप्ति होने से लाभ गिना जाता है, कोई पैसा मिला, मकान मिला, इज्जत मिली, लेकिन उन सब का त्याग कर दिया, उसको भी नुकसान किस बात का रहा, परिणाम में कोई लाभ नुकसान जैसा अनुभव ही नहीं होता है, हर्ष शोक नहीं होता है, न दुख होता है, न दुख मिटने से होने वाला जो सुख है वो सुख होता है, आत्मिक सुख होता है लेकिन वो निर्द्वंद्व है, उसमें हर्ष शोक नहीं है। और जन्म मृत्यु जिसका अभाव हो गया है, वितरागी पुरुषों को नया जन्म नहीं होता, जो वितराग हुए, पूर्ण वितराग हुए, उसको नया आयु बनता नहीं और उसका नया जन्म होता नहीं। जन्म नहीं होता लेकिन मृत्यु तो होती है कि नहीं होती है, देह का आयु पूरा होता है तो मृत्यु होगी कि नहीं होगी, कि उनके आयु पूर्ण होने को मृत्यु नहीं बोली जाती, उनको निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण। निर्वाण क्षेत्र है ना, जहाँ जहाँ से कोई विद्यालय में पधारे चरम शरीरी होकर के, उसको निर्वाण कहते हैं।
निर्वाण का लिटरल मीनिंग क्या होगा?
हाँ,
निर्वाण का लिटरल मीनिंग
मालूम नहीं। निर्वाण
क्या?
निर्वाण का लिटरल मीनिंग क्या है? तो वहां तो हम हमारे स्वाध्याय में तो शब्दकोश रखते हैं,
आवरण
देखिए, और जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति प्राप्त किया है, जिन्होंने भूतकाल में अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में परिपूर्ण लीनता को प्राप्त किया, वर्तमान में जो प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में जो ऐसा परिणाम करेंगे पूर्ण वितरागता का, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम, उसके पुरुषार्थ का उत्कृष्ट पराक्रम है, तो जो पूर्ण दशा को प्राप्त किया, वहाँ पुरुषार्थ भी चरम सीमा को प्राप्त करता है, उत्कृष्ट डिग्री को प्राप्त करता है, पूर्ण पुरुषार्थ होता है, अनंत वीर्य प्रकट होता है, वहां वो पराक्रम हमको सौ आनंद आश्चर्य को उत्पन्न करता है। हमको आनंद आता है ऐसे पराक्रम को देख करके, पर आश्चर्य भी होता है कि क्या पुरुषार्थ है। धन्य वो घड़ी, धन्य वो पल के जिस समय उपयोग अंदर जाकर के बाहर निकले ही नहीं, सदा के लिए निकले ही नहीं, अंदर में ही जमे जमा रहे हैं, ऐसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ के पराक्रम को आश्चर्यकारक पराक्रम कहने में आता है। कि क्या आश्चर्य है, अंदर गया तो गया।
आनंद और आश्चर्य को लिया पर हमारे में उतना पुरुषार्थ बाहर में नहीं आ पाता, तो उसका वो नहीं होता।
और नहीं होता मतलब
लाइक खेद नहीं होता कि हमारे में इतना नहीं हो पा रहा है, उसका एक
वो खेद
खेद। यहाँ आनंद वाली बात को ले लिया
नहीं, इसमें क्या यहाँ आनंद का यहाँ आनंद का अर्थ है प्रमोद।
प्रमोद होता है और साथ में
आनंद का अर्थ यहाँ प्रमोद होता है, क्योंकि दूसरे की दशा देखते हैं इसमें, दूसरे की ऐसी पराक्रम वाली दशा देख करके प्रमोद होता है, और ऐसी दशा उत्पन्न करने के वो दशा प्रेरणा देती है हमें। यहाँ से भी हम गुण लेते हैं, अवगुण नहीं लेते हैं, गुण लेते हैं, प्रेरणा मिलती है। ओहो, ये भी एक जीव है, हमारे जैसा जीव है, जिसने पूर्ण वितरकता को प्राप्त कर लिया, विदप का काम कर लिया, तो खुद को भी प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणास्पद स्थिति है। आश्चर्य तो इस तरह से होता है, आश्चर्य एक अद्भुत दशा वो होती है। जो ज्ञान में आने से उसकी अद्भुतता मालूम पड़ती है, शब्द गोचर होती नहीं है।
परमात्मा की बात है, लेकिन सोगाणी जी के वचनामृत देखे तो भी अपने को प्रमोद आता है।
हाँ,
चपट लगाया है उन्होंने।
हाँ हाँ, तो आएगा ही आएगा। कोई भी साधक हो जिसका पुरुषार्थ उग्र हो, उस पुरुषार्थ को देख करके प्रमोद आएगा ही आएगा। अगर प्रमोद नहीं आता है तो ये समझना चाहिए कि हमको ऐसा गुण प्राप्ति की भावना नहीं है, आएगा ही आएगा। ज्ञानी को कभी दूसरे ज्ञानी के प्रति मात्सर्य नहीं आएगा, और यथार्थ मुमुक्षुता में भी किसी दूसरे मुमुक्षु के प्रति ईर्ष्या नहीं आएगी। हैं? मात्सर्य मैंने ईर्ष्या जेलेसी ये नहीं होता, क्यों? तो अगले का गुण देखता है, उसको प्रमोद आता है, अच्छा ऐसा काम किया बहुत बढ़िया, इसका बहुत बढ़िया मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको भी यही प्रिय है, ऐसी स्थिति हमको भी प्रिय है। तो यथार्थ मुमुक्षुता में मात्सर्य नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं होगी, और ज्ञानी को भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी दशा तो यथार्थ होती ही है। इसलिए ज्ञानी सभी ज्ञानियों को नमस्कार करते हैं। वेद विज्ञान विज्ञान
को भी जब नमस्कार करते हैं तो अन्य ज्ञानियों को तो नमस्कार करें,
सवाल ही पैदा नहीं होता। वेद विज्ञान विज्ञान दिन के घट शीतल शीत भयो जिम चंदन, शांत दशा तिन की पहचाने, करे कर जोड़ी बनारसी बंधन। नाटक समयकार में पद लिया है, जिसने मिथ्या का निकंदन कर दिया, और अपने जैसा शीतल चंदन जैसे कर दी उसको बनारसीदास हाथ जोड़ के द्रव्य भाव से नमस्कार करते हैं। ज्ञानी को नमस्कार करना कि नहीं करना, हमारे यही सिलसिला था।
ज्ञानी का तो नवदा भक्ति बताया
है। हमने बनारसीदासी का पद दिखाया कि देखो बनारसीदासी ज्ञानी थे, तो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं। करे कर जोड़ी बनारस बंदन,
में तो
आचार्य महाराज ने लिखा है। हाँ,
ज्ञानी का
क्योंकि ज्ञानी है, उनके परिणमन की जाति सिद्ध परमात्मा के परिणमन की जाति वाली हो गई है। जाति अपेक्षा से दोनों एक जाति के हैं, माने क्वालिटी एक सी है, क्वांटिटी में, डिग्री में, तारतम्यता में तफावत है, भेद है, लेकिन जाति तो ऐसी ही है।
क्वांटिटी का फर्क मनुष्य देखने का भी
तो उसको गौण करके इस जाति को नमस्कार करते हैं। और सिद्ध परमात्मा को यदि भाषा तो नहीं होती, लेकिन मानो कि उसको भाषा भी, भाषा का योग हो गया, तो सिद्ध परमात्मा जो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या का निकंदन करके सम्यक्त्व को प्राप्त किया, उनको क्या कहेंगे? हाँ, उनको कहेंगे शाबाश। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन देगा, तो पास हो गया ना, तो तुमको धन्यवाद है कि तुम हमारी जाति में, हमारी ज्ञाति में, हाँ,
वेलकम टू द ग्रुप
आ गया। तो बाबा होता ना, बाबा उसकी जमात होती है, तो सन्यासी नहीं बाबा हो जाते हैं, सन्यास लेकर के कपड़े उपड़े बदल करके भगवा कपड़ा पहन कर हैं बाबा बन जाते हैं ना। तो लोग क्या करते, सबको बाबा ही बनाते हैं, अपनी जमात बढ़ाते रहते हैं। ऐसे जो भी सम्यक दृष्टि हुआ ने, वो सिद्ध की जमात में आ गया। इसलिए सिद्ध भगवान उसको धन्यवाद देते हैं, ऐसा होता है। तो सिद्ध भगवान का जिसको धन्यवाद मिला, उनके भाग्य के लिए क्या कहना। हाँ? उनका भाग्य के लिए कुछ कहने के शब्द मिलते नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। यहाँ तक रखें।